पिकेटिंग वगैरह जो हुई उनके परिवार वालों ने बहुत विरोध करके किया था, लेकिन दीदी का निश्चय, दीदी की बाबा के प्रति प्यार और पालना, बहुत दीदी का बाबा से बहुत अटूट था, इसलिए कोई की परवाह नहीं की और दीदी समर्पित हो गई। और दीदी को बाबा ने शुरू से ही यज्ञ में आगे रखकर ये माउंट आबू जब बाबा ने चुना, सुना होगा आप लोगों ने, 1950 में दीदी को और दो भाइयों को बाबा ने कराची से भारत में भेजा और वो सबसे पहले वो आबू में आए और ब्रज कोठी देख करके पसंद किया। भरतपुर राजा की कोठी है जो बस अड्डे के पास में आगे है, तो वो कोठी देखी और बाबा को कहा स्थान अच्छा है और इतनी बड़ी कोठी है जो हम सभी 300-400 लोग संस्था में है वो सब यहाँ रह सकते हैं। तो दीदी ने ही बाबा को फिर वहाँ से बुलाया और सभी भाई बहने पूरे सामान सहित 1950 मई में भारत में आए। और तो आपकी कहानी इसकी बहुत बड़ी है, कैसे सारा सामान लेकर के शिप भर करके ओखा बंदरगाह पर उतरे और वहाँ से ट्रेन लेकर के आबू आए। और उस समय आबू बहुत छोटा सा स्थान था, रोड्स भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा ने इस स्थान पर आकर के बहनों को सबको सेट किया और उस समय बहुत परीक्षाएं भी आई। मैंने थोड़ा सा सवेरे के क्लास में बताया था कि जिन्होंने बाबा को निमंत्रण दे करके बुलाया था कि आप आ जाओ हम आपके यहाँ देखभाल करेंगे, बहुत अच्छा है, भारत के अंदर बहुत सेवाएं होंगी, और वो सिंधी फैमिली वाले ही थे, परिवार वाले ही थे, तो उनके कहने पर सारी संस्था इधर ले आए। लेकिन उन्होंने बाद में सोचा कि अगर बाबा को मदद नहीं दी जाएगी तो संस्था टूट जाएगी और बहनें घरों में वापस आ जाएंगी, ये उनकी युक्ति थी। लेकिन बाबा की युक्ति ये थी कि अगर ऐसा समय आएगा तो ये सब गंगाएं बहना शुरू करेंगी, नहीं तो एक जगह पर रहेंगी। तो जितनी ज्ञान गंगाएं तैयार हुई थी कराची के अंदर तपस्या करके, जब डिग्री पार्ट शुरू हुआ 2 साल, तो उसमें सबके अंदर बाबा ने फोर्स भरा और उन्होंने जा करके सबसे पहला 1952 में 52 में दीदी ही सबसे आगे गई और इलाहाबाद कुंभ मेले में सेवाएं शुरू की, और फिर बाद में दूसरी बहनों ने जा करके दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, फिर पंजाब की तरफ सेवाएं हुई और 1950 के बाद ही 52 के बाद ही सेवा केंद्र खुलना शुरू हुए। और 52 में 52 में जब इलाहाबाद कुंभ मेले में ही अपनी प्रदर्शनी, अपने चित्र लेकर के बहने बैठी थी, तो शिवानंद आश्रम के सन्यासियों ने देखा और उनको अच्छा लगा ज्ञान, और वहाँ ही उनको जापान का निमंत्रण मिला। एक फोटो आपने यहाँ देखा होगा, अभी दिखाया था कि दीदी, दादी और आनंद सोर दादा और रतनमणि दादा, दादी के गले में बहुत सारी मालाएं थी, वो जापान और हांगकांग की 1 साल की सेवा करके वापस आए थे, तो उनका स्वागत दीदी ने यहाँ किया है, बाबा और दीदी ने गिनियों का हार पहनाया था, इतना सब सेवाएं करके 1 साल आए हैं यहाँ, बहुत उनका भव्य स्वागत किया था। तो दीदी वैसे प्रशासन में नंबर 1 थी। मैंने कल दीदी की स्मृति में 25 विशेषताएं सभी सेंटर को लिख करके भेजी, क्योंकि सभी चाहते तो हैं, सबने देखा नहीं है क्या दीदी की पालना थी, क्या उनका मैनेजमेंट था, क्या प्रशासक थी, एकदम पावरफुल कैसे बनी, उसका भी एक इतिहास है। क्योंकि 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, उसके पहले दीदी दिल्ली की सेवा पर रहती थी, दादी बॉम्बे की सेवा पर थी, लेकिन मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी को ही अपने साथ रखा। 65 में दीदी मधुबन में आ गई और फिर यहाँ ही इंटरनल कारोबार में बाबा के साथ साथ राइट हैंड बन करके रही 65 से ही। और जितना भी यज्ञ के अंदर कार्य था, बाबा के साथ उन्होंने फुल ट्रेनिंग ली और बाबा ने उनको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दिया। इसलिए यज्ञ की जो भी कारोबार थी, जितनी डिपार्टमेंट थी, माताएं बहनें थी और जितने पत्र व्यवहार होते थे पूरे भारत के अंदर, बाबा ने अपने साथ साथ दीदी को सहयोगी बनाया। वैसे दीदी लौकिक में स्कूल नहीं गई थी और बाबा ने इनको एक बोर्डिंग के अंदर एक टीचर दी, तो दीदी थोड़ी पावरफुल थी और रोगदार मना नशे में रहती थी, तो टीचर जब पढ़ाती थी तो दीदी पढ़ती नहीं थी। तो एक दिन टीचर ने दीदी की कंप्लेन कर दी बाबा को कि बाबा आप कहते हो इनको लिखना पढ़ना सिखाओ, एक तो पढ़ती नहीं है, सीखती नहीं है। तो बाबा ने बड़े प्यार से दीदी को बुलाया, बोला दीदी तो तुम्हारी कंप्लेन आई है, तुम पढ़ती नहीं हो, लिखना नहीं सीखती हो। तो दीदी कहती है बाबा ये मेरे को कहती है तुम धृष्टता से लिखो, अब धृष्टता अंधे का नाम मैं क्यों लिखूं। अब धृष्टता लिखना तो दीदी को आता नहीं था, इसलिए उसने बोला दीदी बाबा को बोलती है बाबा ये कहती धृष्टता से लिखो, अब मेरे को क्या पता अंधा कैसा था, मैं नहीं लिखती उसका नाम। तो ऐसी बड़ी रमणीक भी थी और रमणीकता की ऐसी कहानियां दीदी की हम लोगों ने सुनी। लास्ट दिन तक दीदी ने हिंदी में साइन नहीं किया, सीखी नहीं हिंदी में, हिंदी में ही साइन करती थी, इतनी बड़ी हेड थी संस्था की। लेकिन बाबा ने उसको इतनी अच्छी कला दी थी। सुना होगा आपने जादेदारी जान की बार बार कहती है कि आज जो मुरली के अंदर प्रश्न उत्तर और कई पॉइंट आती है और राजू को दीदी ने ही ट्रेन किया, सुनते होंगे जानकी दादी कभी कभी क्लास में कहती हैं। तो जब मैं आया 71 में तो दीदी से ही पहली मुलाकात हुई, दीदी दादी दोनों ही थी। दीदी की परख शक्ति बहुत है, इससे क्या लेना है, कैसी है आत्मा, वो देखते ही परख लेती थी कि ये लायक है या नहीं है। और बहुतों को मधुबन में दीदी ने परख करके सरेंडर कराया। तो मुझे कहने लगी तुम्हारा क्या विचार है, मैं तो छोटा था, 15 साल का आया था। तो एक मास में रहा पहले यहाँ पर मधुबन में सेवा में, तो मेरी इतनी दिल लग गई कि अभी तो मुझे जाना ही नहीं है। तो मैंने कहा दीदी मेरा विचार नहीं है, मैं जाऊँ। तो दीदी कहती अच्छा है ना, क्या करेगा, अभी तो विनाश होने वाला है। तो कहती तुम फिर भी तुम दादी से पूछ लो, क्योंकि दीदी और दादी तो शरीर दो थे, आत्मा एक ही थी। तो दीदी मुझे कहती है तुम जाके क्या करेगा, अच्छी तरह से अकेले में बैठा करके पढ़ा करके सिखा करके बोला तुम दादी से मिल जाओ। जब मैं दादी के पास गए तो दादी कहती है तुम समझते हो तुमको छुट्टी मिलेगी। दादी आप कहेंगे तो छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी, बोली तुम इकलौता बेटा है परिवार में और अकेले बेटे पर तो माँ बाप का बड़ा हक होता है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके सारी ये बातें, बहुत सारी बातें मेरे सुनाने लगी दादी। वो कहती है तुम अभी पढ़ाई कहाँ किया, तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, अभी कम से कम थोड़ा तो पढ़ लो, 18 साल का होना तब आना, ऐसे ऐसे बोल करके। फिर कहती अच्छा ठीक है, दीदी ने मेरे को कहा है कि भले रहे, अच्छा लड़का है, अच्छा बालक है, लेकिन बाबा आ जाएगा ना, तुम बाबा से मिल करके पूछना। दीदी ने दादी के पास भेजा और दादी ने मुझे बाबा के पास भेज दिया। तो बाबा कमरे में आए थे, अपने छोटे कमरे में बाबा आते थे, जहाँ पर गद्दी है इसी गद्दी पर बाबा की पधरावनी होती थी। और उस समय बाबा से मिलने के लिए कोई दूसरा नहीं होता था, और हम और बाबा तीसरा नहीं। मिलाने वाली जो दादी थी, रुक्मिणी दादी, जो अभी भी दिल्ली में है, वो उस समय उनकी ड्यूटी थी बाबा से मिलाने की। तो जब बाबा के पास किसी को बिठा देती थी तो बाहर चले जाते थे, बाबा से क्या बात कर रहे हैं वो सुनती नहीं थी। तो मैं कम से कम आधा पौना घंटा बाबा के साथ सामने बैठा था, ऐसे ही बाबा पूछ रहे थे, मैं बता रहा था। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दादी कहती है ना थोड़े दिन के लिए जाओ भले, लेकिन आ जाना फिर। हमने कहा बाबा मेरी दिल तो है, मैं यही रह जाऊं। तो कहते हाँ बाबा भी जानता है यही रहना ठीक है, लेकिन दादी जैसे कहती रहेगा। तो मैं एक साल के लिए गया, हाई स्कूल किया और एक साल पढ़ाई करके, और अप्रैल में जो पेपर मेरे पूरे हुए, शर्त ये थी कि पिताजी की चिट्ठी चाहिए, माता पिता की चिट्ठी होनी चाहिए, फिर वही आ जाना। और पिताजी तो हमारे बहुत पक्के निश्चय बुद्धि थे कि तुम जाएगा तो हम लोग भी सरेंडर हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से चिट्ठी लिख करके दी और मैं जब अप्रैल में आया 72 में तो दादी मिल गई गेट पर ही, कहती तुम आ भी गया, तुमको छुट्टी मिल गई। मैं हाँ दादी मेरे को छुट्टी मिल गई। तो दादी को जब चिट्ठी दिखाई तो बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा है, तुम भले यहाँ मधुबन में रहो। मधुबन में मैं सब सेवाएं करने लगा, लेकिन 73 में दीदी और दादी का एक पोज यहाँ पर दिखाया था, दोनों बीमार हो गए। और दोनों बीमार हुई तो दोनों हॉस्पिटल बॉम्बे में भर्ती हो गई। पहला मास था जनवरी या फरवरी का, दोनों बीमार और दोनों वहाँ चली गई। तो मधुबन के अंदर बड़ा एक लहर फैल गई, जैसे पता नहीं क्या होगा, दीदी दादी दोनों बीमार हैं। तो मधुबन से भाइयों को बहनों को नंबरवार मिलने के लिए बॉम्बे में भेजते रहे, कोई न कोई जाता था ग्रुप मिलने के लिए, जाओ देख के आओ। तो जो हमारा टाइपिस्ट था यहाँ पर, जो मुरली टाइप करता था भाई, उसको छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि एक टाइप राइटर और एक ही टाइप करने वाला था और वही सिंधी भी जानता था। तो उसने दीदी दादी को फोन किया कि हमको तो छुट्टी मिलती नहीं है, मुरली की सेवा ऐसी सेवा है जो हम एक दिन भी नहीं निकल सकते, दादी मेरी दिल है, मैं किसी को सिखा दूं। तो मुझे वहां से फोन आता है बॉम्बे से, दीदी और दादी ने कहा कि ठीक है राजू आया है यूपी से, हिंदी वाला है, और उसको तुम सिखाओ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त होगी? दीदी दादी का पत्र में था कि इसको अनुसार मुझे दादा ने, दादा विश्व रतन जो मधुबन में बहुत अथक सेवाधारी थे, दादा के साथ मैं सुबह आधा घंटा बैठता था और दादा मुझे हिंदी सिखाते थे। काका गागा हिंदी वाले अक्षर, सिंधी लैंग्वेज यही सीखी मैंने, हिंदी को सिंधी में जैसे लिपि सिंधी लिखने के लिए पढ़ने के लिए को मैंने 8 दिन में ही सीख ली और पढ़ने लगा, अक्षर मिलाने लगा। तो फिर उसके बाद छुट्टी मिल गई, तुम टाइप भी सीख सकते हो। तो सिंधी और टाइप सीख करके जब मैं तैयार हो गया तो दीदी और दादी बॉम्बे से वापस मधुबन में आई और मेरे से कहने लगी तुम सिंधी सीख गए? मैंने कहा हाँ दीदी। तो बोला अच्छा तुमने अगर मेरी लिखत पढ़ ली तो पास हो गए। अब दीदी की लिखत तो कहते हैं मूसा ने लिखा अल्लाह ने बचा, तो ऐसी लिखत थी जो मेरे को कुछ भी पता नहीं चले। काका गागा भी ये डायरी अगर आप देखेंगे ना हमारे पास, तो मैंने कहा दीदी ये तो मेरे को पढ़ना नहीं आएगा। बोले फिर क्या सीखा तुमने? तो फिर मैंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर और इसके लिए फिर मैं कमल मणि दादी जो कृष्णा नगर की हैं वो यहाँ रहती थी और वो बहुत अच्छे दीदी के साथ सब प्रश्न उत्तर में मदद करती थी पोस्ट में। तो कृष्णा नगर की दीदी कमल मणि दादी ने मुझे कहा कोई बात नहीं दीदी की राइटिंग मैं तुमको सिखा दूंगी। तो दीदी की राइटिंग पढ़ना मैंने कमल मणि दादी के साथ बैठ करके सीखा और सीखने के बाद फिर दादी मुरली सुनाती थी। दीदी ने कभी मुरली नहीं सुनाई, कभी भाषण नहीं किया। दीदी का प्रशासन नंबर 1 था लेकिन भाषण नहीं किया, भाषण बहुत देती थी और स्टूडेंट नंबर 1। ऐसे ही स्थान जैसे है ना, ऐसे ही दादी मुरली सुनाती थी छोटे हाल में और दीदी नीचे ऐसे सामने बैठ करके पूरी मुरली को प्रश्न उत्तर में चेंज कर देती थी, पूरी मुरली को। और जब दादी पूरा कर लेती थी कहती थी अभी हम अपना मुंह घुमा लेती थी और कहती थी अभी मैं बैडमिंटन खेलूंगी, माना मैं प्रश्न फेंकूंगी और आपका उत्तर चाहिए। और जब तक पूरे क्लास को फेल नहीं करे तब तक उठना नहीं, आधा घंटा तक। कहती थी जो फेल हो जाएगा उसकी टोली बंद और जो पास हो जाएगा उसको डबल टोली मिलेगी, टोली क्लास की मिलती है ना। तो दीदी बहुत रमणीक थी और खूब चिट-चैट करती थी। सवेरे के क्लास की मुरली के बाद एक भी सोफा नहीं था, एक भी कुर्सी नहीं थी क्लास के अंदर, दादी की संगली और सब नीचे और लाइन में एकदम ऐसे सब बैठ करके मुरली सुनते थे और फिर आधा पौना घंटा खूब चिट-चैट होती थी, उसके बाद सब ड्यूटी पर जाते थे। तो दीदी ने मुझे पहले अपनी डायरी पढ़ना सिखाई, फिर कहती थी अभी ले जाओ और तुमको जो इसमें से अच्छा लगे उससे क्वेश्चन आंसर निकाल के ले आओ टाइप करके। लैंड लेटर अभी तो 2.5 रुपए का, उसमें 10 पैसे का था, 10 पैसे का टिकट, भाई 10 पैसे वाला तुम लैंड टाइप करके ले आओ और जितनी कहाँ पे निकाल सको उतनी निकालो, क्योंकि उसमें फैक्ट तो थी नहीं। तो मैं कार्बन लगाता था 4, 5, 6 कापी, एक बार टाइप किया, फिर 2 बार टाइप किया, फिर 3 बार टाइप किया, यही धंधा मेरा चलता रहता। क्योंकि लैंड पर एक तरफ प्रश्न उत्तर मुरली के और दूसरी तरफ जो साइड में थोड़ा सा खुला होता है उस पर हर पत्र का उत्तर। तो दीदी का एक नियम था, बाबा के पास जैसे पोस्ट आती थी तो हर पत्र का उत्तर बाबा देता था। तो दीदी ने बाबा के अव्यक्त होने के बाद ड्यूटी अपने ऊपर ले ली कि जितने भी पत्र आएंगे बाबा के पास उन सब का उत्तर मैं दूंगी। अब अकेले तो इतना कैसे करेगी, इसलिए दीदी ने बड़ी युक्ति रची। तो बाबा की तो लाल पेंसिल थी, बड़े बड़े अक्षर थे, 2 अक्षर में ही सारा पत्र भर देता था। अब कैसे किया जाए इतने सारे पत्रों का उत्तर। तो दीदी ने फिर एक तरफ प्रश्न उत्तर और दूसरी तरफ साइड में उसका उत्तर, पत्र का उत्तर हाथ से लिखते थे। तो हम 5-7 भाई बहने दीदी के साथ बैठते थे, मुन्नी बहन थी, हम थे और मोहिनी बहन थी, ऐसे 4-5 लोग बैठ करके ऑफिस में ये सारी पोस्ट का काम हम 10 बजे उतार देते थे। फिर भी सोचल दादा सब में एड्रेस डालते थे यहाँ से, और एड्रेस डाल के जब तक पोस्ट नहीं गई तब तक नाश्ता नहीं करना, पहले पोस्ट जानी चाहिए फिर नाश्ता होगा। तो दिनचर्या दीदी के साथ बन गई। इस तरह से दीदी के अंदर एक तो मुरली के प्रति बहुत प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था कि अगर कोई भी मधुबन निवासी एक दिन की मुरली मिस कर दे तो उसकी आज नहीं रखती थी, क्योंकि तो थोड़े नजर सब पर जाती थी। दीदी ने एक नियम बना लिया था कि अमृत वेला मैं खुद कराऊंगी, सवेरे का योग अमृत वेले का दीदी हल्का सा स्नान करके और आ करके सबसे पहले योग में कमरे पर बैठ जाती थी योग कराने के लिए। अब जो भी आते थे, कोई डर के मारे भी तो आते थे, और कोई नहीं आए तो बोलती कुछ नहीं थी। लेकिन नाश्ते के बाद कमरे में गई तो दीदी के पास एक बेल होती थी, बेल बजाई, पहरे वाले को बुलाया। पहरे वाला रहता था गेट पर, हो गया दीदी क्या, बोला फलाने को बुला लो, कहती थी सेट करके आओ, तो फलाने को सेट करके, सेट करना सिंधी कहते हैं, बुला के ले आओ। तो दीदी हमेशा उसको कहते फलाने को सेट करके। अब जब सेट किया उसने तो माना कांपने लगाओ, अब क्यों दीदी ने बुलाया, अभी क्या होगा पता नहीं मेरी कैसी। दीदी कहती कुछ नहीं थी, बुला लेती थी और बुला के ऐसे दृष्टि प्यार से देती थी और पूछती थी तुमने नाश्ता किया है, दीदी नाश्ता किया है, अच्छा क्या सेवा किया, सेवा भी किया, अच्छा आज सवेरे कहाँ थे, बीमार थे क्या, आज योग में नहीं देखा तुमको, आज मुरली क्लास में नहीं देखा, ऐसे एक एक के ऐसे कान खींच करके फिर टोली चला के भेज देती। और कभी कभी फिर क्या करती थी, एक दिन की बात है हंसी की, पहरा रहता था कि योग के बाद सोता कौन है, योग के बाद सो जाते थे जा करके। तो एक दिन दादी दीदी ने क्या किया, योग में कौन करने उनके चेकिंग की जाए, तो हम लोग लाइट हाउस में रहते थे, यहाँ भाइयों का एक अलग बिल्डिंग है तो वहाँ पर रहते थे। तो दीदी दादी ने एक दिन प्लानिंग की होगी सुबह सुबह कि योग के बीच से चलो चलते हैं दोनों ने, तो दोनों बीच से उठ गई योग से और उठ करके दोनों ने घूंघट निकाल लिया माताओं जैसा, और घूंघट निकाल करके सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आ गई। तो हम 2-4 भाई थे जो व्रत कर रहे थे बाहर लेली परी खड़े थे वहां स्टेशन पर, तो हम लोग जोर से चिल्लाए माताएं ये तो भाइयों का स्थान है तुम कहाँ से आ गई। तो दादी तो बड़ी तेज थी, ऐसे क्या कुछ बोलने, अब हम समझ गए दादी दीदी है दोनों, दौड़ के मेरा दादी क्या हुआ सवेरे सवेरे इधर, बोली कौन कौन सोया है तुम मेरे को नाम बताओ। हम 3-4 भाई दादी के पीछे पीछे लग लिए, तो फिर हर कमरे में दादी जाए बाहर से देखे बताए नोट करके आओ कौन कौन सोया हुआ है, सबके नाम नोट करके लिस्ट बन गई एक पूरी रात पूरी। हर कमरे में दादी दीदी ने चक्कर लगाया, कुछ नहीं बोली, किसी को जगाना नहीं, किसी को बोलना कुछ नहीं। अब सबको पता चल गया सारे घर में चलो दीदी दादी आज सबके कमरों में आई थी। अब आप समझ सकते हो उसके बाद क्या हुआ होगा, बोला कुछ नहीं लेकिन क्लास में बुला करके आज कौन कौन नहीं थे, कौन कौन नहीं थे, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, एक एक पैसे उठवाया, क्यों नहीं थे, क्या हुआ, बाबा की श्रीमत की अवज्ञा, ये बहुत बड़ा बोझ है, बस इतना कह करके सबको अलर्ट कर दिया। तो ऐसे दीदी दादी की बहुत नजर रहती थी, कहती थी अगर ब्राह्मण जीवन में बाबा के बच्चे बने हो तो इन दो बातों पर जरूर ध्यान देना, एक दिन भी अमृत वेला और मुरली क्लास में नहीं करना, बाकी दूसरा क्लास करो या न करो, इन दो पर बहुत अंडरलाइन करके कि ब्राह्मण जीवन के लिए खुराक है और इसी से ब्राह्मण जीवन में जिंदा रह सकता। तो ये दोनों बातें इतना हम लोगों को पक्का करा दी जो आज तक एक दिन भी अमृत वेला में नहीं होता है। मुरली तुम्हारी सेवा ही है लेकिन अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं हुआ। तो कहने का भाव ये है कि दीदी दादी का ध्यान खुद भी बहुत पढ़ाई पर था और रात्रि क्लास में फिर एक बहुत अच्छी युक्ति रचती थी, क्योंकि रात्रि क्लास में कभी कभी अलबेले हो जाते नहीं जाते थे, तो दीदी कहती थी चलो बेल बज गई है मैं पहले चलती हूँ, सबसे पहले दीदी घूम जाती थी छोटे हाल में और बैठ करके देखती रहती थी कौन आए कौन नहीं आए, तो सब पीछे पीछे भागते थे क्लास में, दीदी चली गई दीदी क्लास में चली गई दीदी चली गई। तो दीदी का ध्यान रहता था कि सारे दिन में जो कार्य हुए हैं जो सेवाएं हुई हैं नाइट के क्लास में सब सेवाओं का वर्णन होना चाहिए, अपने अपने अनुभव सुनाओ, सेंटर से कोई ऐसे समाचार आए वो सुनाओ, और फिर रात को जब बाबा आते थे तो मुझे ड्यूटी मिली थी जो बाबा बोलते सब लिखो, क्योंकि उस समय हमारे पास टेप तो थी नहीं टाइप भी नहीं थी, माना अभी जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है कंप्यूटर पे लिख ले टाइप कर लेते, उस समय तो हम सारी रात बैठ करके बाबा बोलता था मैं लिखता था और इतना लिखता था पूरी रात ही बाबा बोलता था और पूरी रात में लिखता था एक कभी मिस नहीं करता था। तो दादी दीदी को तो बाबा कहता था जाओ अभी सो जाओ जाके बाबा मिलेगा बच्चों से, तो सब जा करके सो जाते थे और हम वहाँ पर बाबा के पास बैठ करके लिखते रहते थे। और तो दूसरे दिन क्या करती थी छोटे हाल में कहती थी तुमने जो रात भर बाबा के पास बैठ के लिखा है वो आकर के सुनाओ। अब वो सुनाने के लिए दीदी दादी नीचे ऐसे और हम ऐसे, क्या होता होगा हाल मेरा है? बहुत कांप जाते थे कैसे सुनाऊं मैं, दीदी इतनी बड़ी दादी इतनी बड़ी मेरे सामने बैठी, तो वो इतनी निरहंकारी आत्माएं उनको कदर भान ही नहीं था कि मैं कोई हेड हूँ, समझता कि मैं ऐसे नीचे कैसे उसके बैठूं, लेकिन वो बहुत प्यार से हमको गद्दी बिठा करके और सामने बैठ जाती थी। इस तरह से क्लास सुनती थी पूरा ही बाबा ने क्या क्या सुनाया वो मैं पढ़ करके सुनाता था, फिर जो अच्छा लगता था अंडरलाइन करती थी ये बात बड़ी अच्छी बाबा ने सुनाई कि तुम इसकी मुरली बना दो इस इंटरेस्ट पर भेज दो, ये ऐसे काफी डायरेक्शन मिल जाता था, तो ऐसे मुरली तैयार हो जाती थी दूसरे दिन। तो इस प्रकार से दीदी और दादी की पालना मिली। अब दीदी की कुछ विशेषताएं मैं मुरली सुना दूं, बहुत सी है मैंने 25 विशेषताएं लिखी है, क्योंकि दीदी एक बहुत पक्की सतीव्रता और पतिव्रता थी। सतीव्रता पतिव्रता मैं इसलिए कह रहा हूँ साकार बाबा से दीदी का अटूट प्यार था और इतना प्यार था कि साकार मुरली माना बस बाबा ने जो कहा मुझे प्रैक्टिकल करना ही है। तो दीदी एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ उनको पक्का था जो आ जाए उसको यही पाठ पढ़ाना। और कितने भी बड़े VIP हों भाषण नहीं किया लेकिन इतनी भाषणा देकर उनको परख करके बाबा का बच्चा बना दिया। एक बार यहाँ पर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज वकील यहाँ आए थे, ग्रुप आया था, जज तो जो बाबा का बच्चा था ध्यान में था, तो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील अपने साथ लेकर के आया और दीदी की नजर बहुत तेज थी, मैं बताया ना परख सकती बहुत तेज थी। तो दीदी ने पहले तो उनको अच्छी तरह से पालना दी, हर प्रकार से खिलाया पिलाया, पिकनिक रोज होती थी, मतलब भोजन हुआ तो उसके बाद 5 सुपारी मिलती थी, भोजन के बाद 5 सुपारी जानते क्या होती थी, वो ब्रह्मा भोजन साथ में सबने किया, फिर 5 सुपारी के लिए झोपड़ी में आते थे हम सब, यहाँ झूला झूलते और सब बैठ जाते थे, चिटचैट होती थी 2 बजे दोपहर को 1 बजे के बाद, तो वहाँ पर 5 सुपारी में फल मिलता था, फ्रूट की प्लेट मिलती थी सबको और सब खाते थे और सबको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर हंसना बहलना और रमणीकता के खेल होते थे। ऐसे कभी कभी फेल करती थी ऐसे हंसाती थी जो हंस हंस करके सब लोटपोट हो जाए। तो जब वो वकील यहाँ पर आया तो उसको तो ज्ञान का इतना पता नहीं था, लेकिन दीदी ने दादी ने 3-4 दिन उसको पालना दी और जब जाने लगा तो बोला तुमने पालना का रिटर्न क्या दिया क्या दोगे, तो बड़ा नशे वाला था, बोलता जो कहोगे देंगे, आप बोलो तो मुझे क्या चाहिए, बोला 2 चीजें चाहिए आपसे, दीदी ने दो चीजें उनसे मांग ली। क्या मांगा होगा? बोला एक आना चाहिए। तो पहले तो मुझ गए, एक आना क्या करेंगे, अभी तो आना चलता नहीं, वो सोलह आना चलते थे ना, सोलह आने का एक रुपया। तो दीदी ने कहा एक आना चाहिए। उसने दीदी एक आना क्या करेगी। फिर दूसरा बोलती है पांच कोटे पैसे चाहिए। अब एक आना और पांच कोटे पैसे उसे मांग लिए। बेचारा पहले तो मुझ गया, दीदी ये क्या मांग रही हो, कुछ तो बोलो ना मेरे को, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बोले नहीं, मेरे को तो यही दो चीजें चाहिए, मेरे पास दीदी यही नहीं है, आज का जमाना नहीं इसका। बोला तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं। बोला एक आना माना एक बार रोज क्लास में आना। अब बेचारा बन गया, क्योंकि वायदा तो किया था जो मांगोगे देंगे। बोला दीदी पक्का वायदा है, एक बार मैं जरूर जाऊंगा सेंटर पर, रोज जाऊंगा। और दूसरा बोला जो तुम्हारे पास पांच खोटे पैसे पांच बुराइयां है ना, वो मुझे दान में दे दो। बोला दीदी इसमें तो मेहनत लगेगी, इतनी जल्दी विकारों पैसे छोड़ सकता हूँ। फिर भी कहा तुम रोज जाएगा ना तो छूट जाएंगे। और उसने इतना पक्का नियम बना लिया, वो धीरे धीरे रोज क्लास में जाने लगा। ऐसे दिन भी आए जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं आ सकता था, फिर भी वो मुरली को फोन पर भी सुन लेता था, हाजिरी जरूर दिया, डायरी दिखाता था, डेट वाइज मेरे पास सब नोट्स हैं। और धीरे धीरे इतना निश्चय बुद्धि हो गया जो सरेंडर हो गया, मधुबन में आ गया। और उसने कई केस जीते, कई कई बातें होती छोटी मोटी, वो कईयों में सफल हो गया, मधुबन में सरेंडर हो गया। और बाबा ने उसे बहुत सेवाएं कराई बाद में, वो लालचंद दिल्ली के, याद है दिल्ली के लालचंद। तो उन्होंने नियमित रूप से लास्ट दिन तक भी एक दिन मुरली नहीं ली, और बहुत पक्के बाबा के बच्चे बनकर रहे, बहुत सेवाएं की उन्होंने, और उसके बाद यज्ञ नहीं रहे और उन्होंने बाद में सही छोड़ा। इस प्रकार दीदी की बहुत परख शक्ति थी, और दीदी के सामने विदेश के बच्चे आने लगे थे, तो दीदी उनको जब योग कराते थे ना ऐसे दृष्टि देती थी, अभी भी दृष्टि देखी होगी दीदी की, जिसके ऊपर दृष्टि डाल दे उसको वैकुंठ का साक्षात्कार हो जाए। सब विदेशियों को ज्ञान नहीं सुनाती थी, लेकिन बहुत प्यार की दृष्टि दे करके और उनको वैकुंठ के सतयुग के नजारे दर्शन करा देते। एकाग्रता बहुत जबरदस्त थी, योग कराया माना एकदम कोई हिलेगा नहीं, एकदम पिंड ऑफ साइलेंस, जरा भी कहीं आवाज नहीं। और ऐसी दीदी की दृष्टि पावरफुल थी, जो बाबा से प्यार भी अटूट था, श्रद्धा थी, एक बाबा के सिवाय कोई देहधारी से किसी का लगा हुआ तो फट से बुला लेगी। अगर रिपोर्ट मिल गई तो दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। दीदी के कोई कान भर के चला जाए, फलाना ऐसा करता फलाना ऐसा करता, दीदी की तुम ही बैठ बिठा लेगी अपने पास, और उसी समय गलती हो जाएगी किसकी कंप्लेन लेके आया उसको बुला के लाओ, सही है या गलत है अभी पूछ लेते हैं, अभी फैसला हो जाता, क्यों कल के ऊपर छोड़ा जाए। अब उसी समय उसको बिठा लिया, उसको बुला लिया जिसके लिए कंप्लेन है। अब वो आया सामने सामने कराया, क्या बात थी तुम सुनाओ, दोनों की सुनी, और बाद में दोनों को हाथ मिला करके टोली चला करके भेज दिया, ठीक रहना, कोई बात नहीं, हो गया जो भूल जाओ। तो एक निर्णय करने का एक बहुत सुंदर तरीका था, और उसी समय दीदी निर्णय लेकर के परख करके उसको प्यार की पालना दे करके टोली चला के खुद करके भेज दे। मर्यादाओं में इतनी पक्की थी, जरा भी कोई लूज हो जाए, मान लो कोई भाई किसी के साथ ज्यादा देर तक बात कर रहा है, कोई कंप्लेन चली जाए तो ऐसे बुलाएगी प्यार से, डराओ आज क्या हुआ था, क्यों उसके साथ बात कर रहे थे, सीधे ही बोले क्यों वहाँ बात कर रहे थे खड़े होकर के, उनको शादी करनी क्या उसके साथ, बहुत स्ट्रिक होकर ऐसा डरवा देती थी, पता नहीं अब क्या होगा, कांप जाए कोई। इसलिए दीदी ने अगर बुलाया माना उसका पसीना छूट जाएगा, इतने कड़े नियम और कायदे में रही। और लास्ट दिन तक भी दीदी की जो लौकिक माँ थी ना, क्वीन कहती, दीदी कभी माँ नहीं कहती, क्वीन, उसका नाम था क्वीन मदर, कहती थी क्वीन इन गोपों का ध्यान रखा करो, हम सोलह सोलह छोटे छोटे आए थे ना, इन गोपों का ध्यान रखा करो। क्या दीदी क्या ध्यान रखूं, जाओ इनके पास कमरों में जाओ और इनको अलमारी में कपड़े कैसे रखने चाहिए सिखा के आओ, और अगर कोई फटा हुआ हो ना, बटन ना हो, फट गया हो, तो उसको लेकर के आना, उसको सिलाई करके देना। दीदी की ड्यूटी लगाई थी, दीदी ने अपनी क्वीन मदर की ड्यूटी लगाई, बहुत भोली थी, बहुत सीधी साधी माँ थी, तो रोज हर तीसरे चौथे दिन भाइयों के कमरे में कोई नजर आती थी और कहती थी तुम अपनी अलमारियां दिखाओ, अलमारी में कैसे तुमने कपड़े सजा के रखे हैं, एक एक तय करना सिखाते, तो प्रेस नहीं होता था उस समय, ऐसे तय करो, ऐसे तकिया के नीचे लगाओ, फिर तकिया के नीचे लगा करके फिर ऐसे अलमारी में सजाओ, अगर कोई फट गया है नंबर नहीं है और अगर किसी कपड़े पर नंबर न हो, ये जो नंबर हम लोगों को मिलते थे मिले हैं सबको, अगर किसी के कपड़े पे नंबर नहीं हो धोबी घाट में चला गया तो वो इकट्ठा होता था, फिर वो गठरी पे लेकर के क्लास में आती थी और गठरी क्लास में आई फिर वो कपड़ा उठाया जाता था किसका है, अब जिसका होता कांप जाता है, कोई नहीं कहे मेरा है, क्योंकि नेचुरल है, बेकरी पार्ट था, ऐसा आज जैसा तो है नहीं, दो को चार जोड़ी छह जोड़ी आठ जोड़ी मिल गए और जो जिसको आया बनवा लिया, मधुबन तो मधुबन, उस समय के बड़े कायदे थे, अगर एक जोड़ी भी किसी ने मुझे गिफ्ट में दे दी तो मैं अपने पास रख लूं, ऐसा नियम नहीं था, कोई नहीं किसी को सौगात दी वो दीदी के पास जाएगी, दीदी को देना होगा तो रिटर्न देगी, नहीं देना होगा तो नहीं देगी, क्योंकि नहीं ये रख दो तुमको चाहिए तो यज्ञ से मिलेगा, यज्ञ का पहनोगे तो उसकी याद नहीं आएगी और उसने दिया है उसका पहनोगे तो उसके तुमको याद आएगी, इसलिए बहुत ध्यान देती थी कोई भी का दिया हुआ कपड़ा तुम नहीं पहनना, बाबा के घर से जो मिलता पहनना और हमेशा लट्ठा पहनाया, तेरी काट ली अभी सबके पास तेरी काट आ गया ना, उस समय वही लट्ठा आता था और उसको कहती थी इसको अच्छी तरह धुलाई करो बहुत मजबूत होता है और इसको ही पहनना है सबको, सबको लट्ठा पहनाती, तो एक बार जब दादी 77 में विदेश गई तो दादी ने कहा मैं विदेश होके आई हूँ अपने मधुबन वालों को कोई सौगात दूं, क्या दो, तो बोला मेरी दिल है मैं इनको टेढ़ी काट के ड्रेस दूं, तो दीदी कहती इनको देर मान आ जाएगा, टेढ़ी काट के ड्रेस इनको पहनाएंगी आप, ऐसा करो पजामा सूती दे दो और कुर्ता टेढ़ी काट के दे दो, तो हम लोगों को एक एक कुर्ता टेढ़ी काट का मिला और साथ में पजामा जो था ना वो सूती मिला, अब कोई बनवाए नहीं ऐसी ड्रेस क्या पहना, बोले इसमें क्या देर मान आता है, अरे वो तुम पहनोगे गुम हो जाएगा, कुछ धोबी घाट में इधर उधर हो जाएगा, कितने संकल्प चलेंगे, इसलिए जरूरत नहीं है, ऐसे दीदी हमारी पालना भी करती थी शिक्षाएं भी देती थी, एक बार क्या हुआ हम लोगों के पास घड़ी तो थी नहीं, तो सील दादी का अपने लौकिक में भाइयों से बड़ा स्नेह था प्यार था और सील दादी का जो लौकिक भाई था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो सील दादी उसके पास जाती थी हांगकांग में, तो उसके पास से घड़ी ले आती पुरानी पुरानी घड़ियां इकट्ठी करके और मधुबन निवासियों को घड़ी मिलती थी, कभी कभी किसी का टाइम आ जाता था तो मेरे को एक बार घड़ी दिया और घड़ी दिया तो बोला एक कुर्ते के नीचे पहनना, ऐसे जैसे ही पहना ना मैंने बाहर नहीं दिखाना, उनका क्यों, बोली तुमको देखे या कोई तो 10 के संकल्प चलेंगे, इसको घड़ी मिली मेरे को नहीं मिली, इसलिए घड़ी को ऐसे छिपा कर, छिपा के रखने क्या फायदा है, दिखा नहीं नहीं ऐसे छिपा के रखना कोई देखे नहीं इसको, मेरा इतना ध्यान रहता था कोई किसी से रीस नहीं करे, कोई ईर्ष्या नहीं करे, जो बाबा पहनाए जो खिलाए जैसे ही रखे जिस हाल में रखे खुश रहना सीखो, बेकरी पार्ट था, सबसे पहले मैं जब आया तो मुझे एक काला स्वेटर दे दिया, ठंडी यहाँ बहुत पड़ती है स्वेटर पहनना थोड़ा सा मेरे चेहरे पर फर्क तो लेते थे, कैसा है काला स्वेटर कौन पहन रही था ना काला था, कहती है तुम्हें पता नहीं है आगो की ठंडी का, यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि अगर तुम नहीं पहनेंगे ना तो ठंडी बीमार पड़ जाए, इसलिए दीदी राय देती है तुम चुपचाप ले जाओ इसको और कुर्ते के नीचे पहनना कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे सिखाती बहुत प्यार से थी कि कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे ऐसे सफेद ड्रेस अभी जैसे हम लोगों के पास सबके पास स्वेटर रहते ऐसे थोड़ी थे, एक आधा स्वेटर मिल गया तो उसको बड़ी संभाल के रखना, कहीं गुम न हो जाए नंबर डाल के रखना, अपने हाथ से धोना, सब चीजें स्कूल से स्कूल बहुत प्यार से सिखाई, बहुत टीका नामी से यज्ञ को चलाया, क्योंकि उस समय बहुत डिग्री पार्ट था, लेकिन धीरे 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 दीदी का व्यक्त होना और सारा यज्ञ भरपूर हो गया, चेंज हो गया, जो 11 साल तक धोबी घाट किया ना धोबी घाट पटरी पर, रोटियां जो हम लोगों ने चूल्हे पर बनाई गीली गीली लकड़ियों पर, दीदी के अव्यक्त होते ही पता नहीं क्या सीन हुआ, सब कुछ चेंज हो गया, पूरा यज्ञ चेंज हो गया, और दीदी अगस्त कैसे हुई आपको शायद इसकी कहानी कोई कोई को पता हो, क्योंकि दीदी को अचानक एक दिन योग कराने 4 बजे आ रही थी तो बाथरूम के अंदर धक्का लगा, चक्कर आया थोड़ा सा, और चक्कर आया तो यहाँ पर उनको दीवार लग गई, चोट लगी, ब्लड निकला। फिर भी योग में तो आ गई और योग करा के गई तो सबके संकल्प चलने लगी, पता नहीं दीदी को क्या हुआ, यहाँ पर गोली लगी हुई है, बंधा हुआ है। तो दीदी को कहा, दीदी शायद आपकी आंख में कुछ, उस समय 70-72 साल की एज भी थी, तो दीदी को कहा कि शायद आंख में मोतिया के कारण देखने में कुछ दिक्कत होती होगी, आप चेक कराओ। तो मोतिया बिंदु को चेक कराने के लिए, आंख चेक कराने के लिए दीदी गई यहाँ से बॉम्बे, और आंख की चेकिंग करते करते डॉक्टर ने चेक किया तो कहा आंख के ऊपर एक छोटी सी गांठ है ब्रेन में, और वो ब्रेन की गांठ का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा तो सभी ने पहले तो सोचा कि ब्रेन का ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी क्या करें, आंख का ऑपरेशन कराने गई थी लेकिन डॉक्टर कह रहा ये कराना। सब ने बड़े मुश्किल से सबसे राय सलाह करके छुट्टी दी, लेकिन दीदी बहुत उपराम हो गई थी, 1 साल से ही सब बातों से उपराम हो गई थी, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा पत्र व्यवहार में ज्यादा नहीं, और हर एक को कहती थी अब घर चलना है, अब घर चलना है, कोई भी बात हो अब घर चलना है, छोड़ो ना अब घर चलना है, ये बहुत पक्का मंत्र था। ये क्या पता था कि दीदी सही छोड़ के ही जाने वाली थी, कहीं घर चलना है, घर चलना है। तो जब यहाँ से गई बॉम्बे में उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चली गई, और कोमा में 21 दिन तक रही, एक दिन भी आग कभी खोली होगी बात नहीं किया, और 28 जुलाई को करीब 9:30 बजे सवेरे सवेरे यहाँ भोग लग रहा था, और भोग लगाने वाली यहाँ जो संदेशी थी उसमें वो दृश्य सारा उसने देख लिया क्या हो रहा है, दीदी अभी सही छोड़ना, किसी को ये नहीं था दीदी सही छोड़ेगी, लेकिन वो जब संदेश से वापस आई संदेश से, तो संदेश सुनाते सुनाते रोने लगी और बोला मैंने देखा कि दीदी के ऊपर बहुत सारे लोग फूल डाल रहे हैं, और वो दृश्य देख करके मैं घबरा गई, इसलिए मेरे को आंसू आ गए। वो बाबा ने उसको 9 बजे यहाँ भोग लग रहा, गुरुवार का दिन था, भोग लग रहा था, उधर दीदी सही छोड़ रही, तो बाबा ने उधर से यहाँ पर उसको इमर्ज करके दिखाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब पता चला दीदी ने सही छोड़ा, तो मधुबन वाली कहे दीदी ने सही छोड़ा, हम सब मधुबन से वहाँ जाएंगे, तो डॉक्टर ने कह दिया कि बॉडी 21 दिन तक दवाइयों पर रही है, इसलिए उसको आप मधुबन नहीं ले जा सकते हो, सड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन दादी जानकी वहाँ थी, सामने थी, उन्होंने डॉक्टर को कहा कुछ भी हो जाए मुझे तो दीदी को मधुबन ले जाना है। तो यहाँ हलचल चल रही थी, हम सब बॉम्बे जाएंगे, और वहाँ दादी तैयार कर रही थी दीदी को मधुबन ले आएंगे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को समझा समझो करके छुट्टी ली, और फ्लाइट से अहमदाबाद से यहाँ लेकर के आए, 30 जुलाई को सवेरे यहाँ पहुँचे, और उसी दिन अंतिम संस्कार हुआ। बहुत बड़ी भीड़ थी और सबके अंदर एक सुविधा थी कि डॉक्टर ठीक नहीं था, डॉक्टर ने ठीक इलाज नहीं किया दीदी का, हमारी दीदी ऐसे कैसे जा सकती थी, अभी तो बहुत सेवाएं पड़ी हुई हैं। तो बाबा शाम को आए, बाबा को बुलाते हैं ना सब संस्कार के बाद, तो बाबा आए तो बाबा ने बड़ी प्यार से मुरली सुनाई और कहा बच्चे न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, डॉक्टर का नाम था भगवती न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, तो ड्रामा बना हुआ था, इसलिए दीदी को बाबा प्यारी थी, बाबा को आप बच्चे प्यारे, बाबा को दीदी प्यारी, दीदी को आप प्यारे, ऐसे कह करके बहुत प्यार प्यार से कह के कहा, जो आपको प्यारी थी वो बाबा को प्यारी है, बाबा के पास आ गई, इसलिए आप लोग कोई संकल्प नहीं करो, बाबा को उसे एडवांस में बहुत सेवाएं करानी है। तो भोग लगा और भोग के बाद बाबा ने संदेश दिया, मुरली चलाई है कायदे से, और मुरली के बाद सब शांत हो गए, जो हुआ ठीक है, ड्रामा था। उसके बाद दादी जानकी को सहमुखी प्रशासिका बनाया गया, और दादी जानकी तलंगन में रहती थी, तो दादी ने सोचा था अभी मेरे से लंदन छुड़ाएंगे, तो जयंती बहन और सब बड़ी विदेश की बहनी बोलने लगी कैसे कैसे दादी अभी लंदन छोड़ेगी, तो फिर चलो मैं दादी को सहमुखी प्रशासिका बना करके दादी जी के साथ से वापस रखा। 83 में चलो मैं दादी पंजाब से यहाँ आ गई, और मनोहर दादी भी आ गई, सब सेवा पर दादी के सहयोगी बन गई, और दादी जान की जैसे विदेश में सेवा कर रही थी वैसे करती रही और फिर बहुत अच्छी सेवाएं हुई। और पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दीदी थी, अभी आपने देखा था रॉबर्ट मुलर सामने बैठे थे, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, पहली कॉन्फ्रेंस में तीसरी में आए थे और उस समय दीदी थी मौजूद। उस समय यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहाँ पर बॉम्बे में पुष्प सांसा दादी शरीर छोड़ रहे थे और इच्छा मृत्यु। पुष्प सांसा दादी की बड़ी वंडरफुल कहानी है क्योंकि शुरू में बाबा ने एक जोड़ी दिखाई थी कृष्ण के माँ बाप, और उसमें पुष्प सांसा दादी और दीदी की जोड़ी थी। तो पुष्प सांसा दादी 8 फरवरी को यहाँ कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन और वहाँ उसने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ा इच्छा मृत्यु ऐसी थी कि एक दिन पहले उनको थोड़ा हार्ट में दर्द हुआ तो डॉक्टर आए और कहने लगे दादी आपको किसी भी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती होना। बोले कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे कल शरीर छोड़ना है। बोला दादी ऐसे आप कैसे बोलती हो? बोले नहीं मुझे कल शरीर छोड़ना है। तो बोला नहीं दादी कुछ भी हो जाए, आपके 6 बच्चे हैं, लौकिक में 6 बेटियां और उनका बहुत बड़ा परिवार सिंध में सारा जापान में हांगकांग में बहुत बड़ा परिवार, अगर आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो कहेंगे दादी को लोगों ने मार दिया इसलिए हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। बोले भले ले चलो। अब दादी को हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में सवेरे तैयार हुई, उठी, उठ करके नहाया धोया तैयार हुई और बाबा की याद में बैठी और बोली अभी तुम जाओ सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को बोलो कि 8:30 बजे दादी शरीर छोड़ने वाली है। तो सब सोच रहे दादी पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया है। बोला नहीं नहीं सबको बुला के ले आओ। तो जितना स्टाफ था करीब 40-50 का हॉस्पिटल में सबको गई बहन बुला, मम्मी बहन वहाँ थी कोलाबा वाली, वो जा करके सबको बुला करके ले आई और बुला के लाई तो दादी के सामने सब इकट्ठे हो गए और दादी ने ऐसे दृष्टि दी और बाबा को पूछे वैसे भी ट्रांस में जाती थी वो तो ट्रांस में चली गई वतन में। उस समय फरवरी में उस संता दादी ने शरीर छोड़ा और जुलाई में दीदी ने शरीर छोड़ा और अभी वो दोनों कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए। 30 साल हो गए ना 83 से 2013 तो अभी जन्म तो होना नहीं है श्री कृष्ण का, कितना समय लगेगा अभी सोच लेना कितना समय लगेगा। तो लेकिन इसमें जाना नहीं कब होगा कैसे होगा, लेकिन बाबा कहता है कि सतयुग अभी बहुत समीप है, आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, इसके अंतिम तैयारियां तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन ये सब आत्माएं जो बहुत पक्के योगी हैं वो योग बल से ही जन्म दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो योग बल से जन्म देने के लिए अपने योग के बल का प्रयोग करने के लिए एडवांस में गई है और नई सृष्टि हम लोगों के लिए तैयार हो रही है। फिर से इस सृष्टि पर स्वर्ग आएगा और ये आत्माएं निमित्त बनेगी। ओम शांति।